एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने वाले हैं जो इतिहास को और शायद हमारी आज की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे।
हाँ, किताब है कोज़िन कारातानी की विश्व इतिहास का ढांचा, विनिमय के चार तरीके। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना?
हाँ, नाम तो है थोड़ा अकादमिक, लेकिन इसका आइडिया बड़ा दिलचस्प है। कारातानी कह रहे हैं कि इतिहास समझने के लिए सिर्फ ये मत देखो कि चीजें बनती कैसे हैं, मतलब खेती से या फैक्ट्री में,
बल्कि ये देखो कि लोग आपस में लेन देन कैसे करते हैं।
बिल्कुल। पारंपरिक सोच, खासकर मार्क्स वाली, वो उत्पादन के तरीकों पर टिकी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन।
हाँ, सामंतवाद, पूंजीवाद, वो सब
सही, लेकिन कारातानी कहते हैं असली कहानी विनिमय के तरीकों में है, मोड्स ऑफ एक्सचेंज। और ये आज इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये समझाता है कि हमारी आज की दुनिया की जो गांठ है ना,
गांठ मतलब
ये जो तिकड़ी है, पैसा कमाने का बाजार, ताकतवर सरकारें और वो देशभक्ति वाली भावना, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं एक जटिल गांठ की तरह।
और ये किताब सिर्फ समझाती ही नहीं बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि क्या इस गांठ को खोला जा सकता है, क्या इस पूंजीवाद राष्ट्र राज्य के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता है।
हाँ, और कारातानी एक संभावना भी सुझाते हैं, उसे वो कहते हैं विनिमय का तरीका डी। तो चलिए आज इसी पेचीदा लेकिन अहम मुद्दे पर गहराई से बात करते हैं।
जरूर। पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए, कोज़िन कारातानी।
हाँ, कोज़िन कारातानी जापान के बहुत ही जाने माने प्रभावशाली दार्शनिक और आलोचक हैं। उनका काम कई एरिया में फैला हुआ है, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, सब कुछ।
और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो कोई टिपिकल इतिहासकार या अर्थशास्त्री नहीं है, वो एक दार्शनिक की नजर से इतिहास को देखते हैं।
बिल्कुल, जैसे कोई आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को देखता है ना, वैसे ही कारातानी समाज के बुनियादी ढांचे, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। वो सतह के नीचे की संरचनाएं खोजते हैं।
और उनकी एक और खास बात है ना, वो मार्क्सवाद को बहुत अच्छे से समझते हैं।
हाँ, गहराई से, लेकिन उसकी सीमाओं की तीखी आलोचना करने से भी नहीं हिचकिचाते, और साथ ही उन पर जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट का भी गहरा असर दिखता है।
कांट यानी नैतिकता और तर्क।
हाँ, वही नैतिकता कारातानी का भविष्य के समाज की जो कल्पना है उसको आधार देती है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये भी सोचते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, एक नैतिक आयाम जुड़ जाता है।
उनका वो ट्रांसक्रिटिक वाला तरीका भी काफी अनोखा है।
ट्रांसक्रिटिक? हाँ, वो सिर्फ आलोचना नहीं है बल्कि विचारों और समाज के बनने के जो मूल तरीके हैं उन पर ही सवाल उठाता है। और एक बात और।
क्या?
क्योंकि वो जापान और पश्चिम दोनों अकादमिक दुनियाओं से जुड़े रहे हैं, उनका नजरिया सिर्फ यूरोप या अमेरिका पर केंद्रित नहीं है, वो ज्यादा ग्लोबल है। ये आज के समय में बहुत जरूरी चीज है।
सही कहा। तो ये किताब आखिर करती क्या है, इसका सार क्या है?
ये एक तरह से पूरी मानव सभ्यता की कहानी को एक नए फ्रेमवर्क में फिर से कहने की कोशिश है। कारातानी हमें इतिहास को समझने के लिए एक नया चश्मा देते हैं, आप कह सकते हैं, और इस चश्मे के चार लेंस हैं।
वही विनिमय के चार तरीके।
हाँ, वही चार तरीके।
अच्छा, तो ये चार तरीके कौन से हैं, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे?
जरूर। पहला है तरीका ए, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। सोचिए, पुराने कबीले या गांव, लोग एक दूसरे को तोहफे देते थे, जरूरत पर मदद करते थे, लेनदेन का आधार रिश्ते थे, समुदाय था, पैसा या मुनाफा नहीं।
जैसे किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव जुट जाता है मदद करने।
बिल्कुल वैसा ही, वो तरीका ए है। फिर दूसरा है तरीका बी, लूट और पुनर्वितरण, प्लंडर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये मूल रूप से राज्य या सरकार का तरीका है। शासक या सरकार बल से, जैसे टैक्स वसूल कर, संसाधन जमा करती है।
कारातानी से लूट कह रहे हैं।
हाँ, एक तरह से। फिर उसे अपनी मर्जी से दोबारा बांटती है, सेना पर, सड़कों पर या अपने वफादारों को इनाम देने में। इसमें ताकत और नियंत्रण वो मुख्य है।
ठीक है, राजा या सरकार का राज। और तीसरा?
तीसरा है तरीका सी, वस्तु विनिमय, कमोडिटी एक्सचेंज। ये तो आज की दुनिया का सबसे जाना पहचाना तरीका है, बाजार, मार्केट। आप पैसा देते हैं, बदले में सामान या सर्विस खरीदते हैं।
खरीद फरोख्त?
हाँ, सब कुछ खरीद फरोख्त पर आधारित, और मुख्य मकसद मुनाफा कमाना, यही तो पूंजीवाद का बेस है।
ओके, तो ए हो गया कबीला, बी हो गया राज्य, सी हो गया बाजार, लेकिन वो चौथा तरीका डी, ये क्या बला है? आपने कहा था ये सबसे पेचीदा है।
हाँ, तरीका डी, एक्स फैक्टर। देखिए, ये असल में तरीका ए, यानी वो आपसी मदद वाला तरीका, उसी का एक विकसित रूप है। एक ज्यादा ऊंचा, ज्यादा वैश्विक रूप।
ऊंचा रूप कैसे?
मतलब ये कबीले की बंदिशों से आजाद है, राज्य के जोर जबरदस्ती से मुक्त है और बाजार के सिर्फ मुनाफे वाले तर्क से भी परे है। ये बराबरी और आजादी के साथ जुड़ने की इच्छा है, बिना किसी भारी दबाव या लालच के।
तो ये कहाँ दिखता है?
कारतनी मानते हैं कि दुनिया के जो महान धर्म है, जैसे बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और जो नैतिक दर्शन है, उनमें इसके बीच मिलते हैं। जहां वो सार्वभौमिक प्रेम, करुणा, बराबरी की बात करते हैं, किसी रिश्तेदारी या राज्य की सीमा से परे।
अच्छा, यानी ये एक आदर्श जैसा हुआ, एक एस्पिरेशन।
हाँ, कह सकते हैं एक तरह का आदर्श। और कारातनी का मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि इतिहास इन्हीं चारों तरीकों के आपसी टकराव, उनके मेलजोल से आगे बढ़ाए। कोई भी तरीका कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस दब जाता है या रूप बदल लेता है।
और हमारी आज की दुनिया?
हमारी आज की दुनिया को समझने के लिए ये देखना होगा कि ये चारों कैसे एक बहुत ही जटिल गांठ में बंधे हुए हैं, और अगर हम इस गांठ को नहीं समझेंगे तो इसे बदलने की कोई भी कोशिश वो कामयाब नहीं होगी।
तो चलिए इस गांठ को थोड़ा और खोलने की कोशिश करते हैं। किताब के अलग अलग हिस्सों में कारातनी कैसे इन तरीकों को इतिहास में काम करते हुए दिखाते हैं?
हाँ, किताब चार हिस्सों में। पहला हिस्सा मिनी वर्ल्ड सिस्टम्स, उसमें वो दिखाते हैं कि शुरुआती जो कबीलाई समाज थे वो ज्यादातर मोड ए, परस्परता पर चलते थे, गांव, समुदाय, आपसी मदद।
ठीक है,
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्य मोड बी, वो अक्सर अंदर से पैदा नहीं हुआ, वो बाहर से थोपा गया।
बाहर से मतलब?
जैसे कोई खाना बदोश समूह आया, उसने किसानों पर कब्जा कर लिया और उन पर शासन करने लगा। तो गांव का जो आपसी भाईचारा था मोड ए, और ऊपर से जो राज थोपा गया मोड बी, उसमें हमेशा एक टेंशन, एक खींचतान बनी रही।
अच्छा, फिर दूसरे हिस्से वर्ल्ड एम्पायर्स में क्या होता है?
बड़े साम्राज्य जैसे रोम, चीन,
हाँ,
उन बड़े साम्राज्यों में मोड बी राज्य हावी था। सम्राट या राजा एक बहुत बड़ी मशीन की तरह टैक्स वसूलता था, और फिर उसे सेना, प्रशासन, बिल्डिंग्स, कभी कभी प्रजा पर भी खर्च करता था, पुनर्वितरण।
और मोड सी का क्या हुआ, वो धर्म वाली बात?
हाँ, वो यहीं पर इन्हीं बड़े साम्राज्यों के भीतर मोड सी के बीज के रूप में उभरे। सार्वभौमिक धर्म, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, ये धर्म कबीले या राज्य की सीमाओं से परे जाकर सिर्फ साझा विश्वास और नैतिकता के आधार पर लोगों को जोड़ने की बात कर रहे थे, बराबरी, करुणा।
लेकिन क्या ये सफल हुए?
पूरी तरह नहीं। हुआ ये कि अक्सर राज्यों, मोड बी ने इन्हीं धर्मों का इस्तेमाल अपने शासन को सही ठहराने के लिए, उसे फैलाने के लिए कर लिया, तो धर्म की जो मूल क्रांतिकारी भावना थी वो कहीं दब सी गई।
और फिर आता है तीसरा हिस्सा, मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये शायद सबसे अहम है ना?
बिल्कुल, सबसे ज्यादा रिलेवेंट आज के लिए। यहीं आकर मोट सी, वस्तु विनिमय यानी बाजार और पैसा, वो समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है,
पूंजीवाद का उदय।
हाँ, मुनाफा कमाने की होड़ वो इतनी बढ़ जाती है कि समाज के हर रिश्ते को बदलने लगती है। दोस्ती, परिवार, समुदाय, सब पर पैसे का असर दिखने लगता है, चीजें बिकाऊ हो जाती हैं।
और यहीं पर कारातूनी अपना वो मशहूर आइडिया लाते हैं, पूंजी राष्ट्र राज्य की त्रयी, कैपिटल नेशन स्टेट ट्रिनिटी। ये सुनने में अब भी थोड़ा जटिल लग रहा है।
है तो जटिल, पर चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कारातूनी इसे बुरुमियन गांठ कहते हैं। सोचिए, तीन छल्ले हैं,
तीन रिंग्स।
हाँ, तीन रिंग्स, और वो इस तरह से गुनते हुए कि अगर आप एक छल्ला भी हटा दें तो बाकी दोनों भी अपने आप अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे के बिना टिक ही नहीं सकते।
अच्छा, तो ये तीन छल्ले कौन कौन से हैं हमारी दुनिया?
पहला छल्ला है पूंजी, कैपिटल, यानी मोड सी, बाजार अर्थव्यवस्था, पैसे से और पैसा बनाने की वो अंतहीन दौड़। दूसरा छल्ला है राज्य, स्टेट, यानी मोड बी, आज की सरकारें, जिनके पास कानून बनाने और सजा देने की ताकत है, जो पुलिस फौज रखती हैं, जो बाजार को सुरक्षा देती हैं, नियम कानून मुहैया कराती हैं।
और तीसरा छल्ला वो सबसे चौंकाने वाला था, राष्ट्र, नेशन। ये कैसे जुड़ा है और ये मॉड ए का बदलाव रूप कैसे हुआ?
मॉड ए तो छोटे कबीलों की आपसी मदद थी, यही तो पेंच है। कारातीनी कहते हैं कि राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है, इमेजिन्ड कम्युनिटी। ये पुराने कबीलाई हम वाली भावना को ही एक बहुत बड़े स्केल पर जिंदा करता है।
कैसे?
ये हमें महसूस कराता है कि हम सब एक देश के लोग एक हैं, भले ही हम एक दूसरे को जानते भी ना हों, हमारी भाषाएं अलग हों, हमारी आदतें अलग हों, ये एक अपनापन पैदा करता है।
और इसका फायदा?
इसका फायदा यह है कि ये भावना पूंजीवाद से जो अमीर गरीब का भेद पैदा होता है, जो तनाव पैदा होता है, उसे छुपाने में मदद करती है, और लोगों को अपने राष्ट्र के नाम पर, राज्य के कहने पर लड़ने मरने तक को तैयार कर देती है।
वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। यानी पूंजी, राज्य और राष्ट्र, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पालते पोसते हैं, एक दूसरे को जिंदा रखते हैं।
बिल्कुल, एक दूसरे पर निर्भर हैं। पूंजी को फलने फूलने के लिए राज्य की स्थिरता चाहिए, उसके कानून चाहिए, सुरक्षा चाहिए। राज्य को चलने के लिए पूंजी से मिलने वाला टैक्स चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, और इन दोनों को टिके रहने के लिए लोगों को एक साथ जोड़े रखने वाली राष्ट्र की वो गोंद चाहिए।
तो कारा टोनी का तर्क ये हुआ कि अगर आप इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं
तो सिर्फ पूंजीवाद का विरोध करने से या सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको इस पूरी त्रयी पर, इस पूरी गांठ पर एक साथ चोट करनी होगी।
और किताब का जो चौथा हिस्सा है प्रेजेंट इन फ्यूचर,
वो इसी रास्ते की बात करता है।
हाँ बिल्कुल, यहाँ कारा टोनी पिछली क्रांतियों को देखते हैं, खासकर 20वीं सदी के जो साम्यवादी प्रयोग हुए, सोवियत संघ, चीन वगैरह,
और उनकी आलोचना करते हैं।
हाँ, तीखी आलोचना। वो कहते हैं कि ये क्रांतियाँ इसलिए नाकाम हुई क्योंकि उन्होंने पूंजी सी को तो निशाना बनाया, ठीक है, लेकिन उन्होंने राज्य की ताकत को कम नहीं किया बल्कि और बढ़ा दिया।
अच्छा, हाँ, नतीजा ये हुआ कि एक तरह की तानाशाही पूंजी की खत्म हुई तो दूसरी तरह की राज्य की तानाशाही आ गई, और राष्ट्रवाद मोड ए का बिगड़ा रूप भी जस का तस बना रहा, वो गांठ टूटी नहीं।
तो फिर रास्ता क्या है? अगर पुरानी क्रांतियां नाकाम रहीं तो क्या करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें?
नहीं, करातनी एक रास्ता सुझाते हैं। वो कहते हैं मोड डी को जानबूझकर सचेत रूप से दुनिया भर में लागू करने की कोशिश करनी होगी।
मोड डी, वो आपसी सहयोग वाला?
हाँ, इसे वो एसोसिएशनिज्म या साहचर्यवाद कहते हैं, मतलब ऐसे संगठन और रिश्ते बनाना जो राज्य के दबाव और बाजार के लालच दोनों से आजाद हों।
जैसे कुछ उदाहरण देंगे?
हाँ, जैसे आर्थिक स्तर पर सहकारी समितियां, कॉपरेटिव्स, ऐसी कंपनियां जिनके मालिक वर्कर खुद हों, स्थानीय मुद्राएं, मतलब ऐसी चीजें जो मुनाफे की बजाय आपसी सहयोग पर चलें।
ठीक है, आर्थिक विकल्प। और राजनीतिक स्तर पर?
राजनीतिक स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण, पावर नीचे तक जाए, स्थानीय स्वशासन मजबूत हो और देशों की सीमाओं से परे जाकर अंतर्राष्ट्रीय जन आंदोलन बने, ग्लोबल सॉलिडैरिटी।
और सामाजिक स्तर पर?
सामाजिक स्तर पर वो जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है उससे ऊपर उठना, वैश्विक नागरिकता की भावना, एक वैश्विक नैतिकता विकसित करना, आपसी मदद के नेटवर्क बनाना।
ये कुछ कुछ कांट के साध्यों के साम्राज्य जैसा लग रहा है।
हाँ, करातनी खुद ये कनेक्शन बनाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान को अपने आप में एक लक्ष्य माना जाए, न कि किसी और चीज का साधन, मींस। लेकिन करातनी साफ कहते हैं कि ये होना तय नहीं है, ये इतिहास की कोई मजबूरी नहीं है कि ऐसा होकर रहेगा, ये एक नैतिक और राजनीतिक चुनाव है, एक चॉइस है जो हमें और आपको करनी होगी।
ये तो बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी गहरा विचार है। अगर इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे आपके हिसाब से?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बुनियादी बात तो यही है कि इतिहास का इंजन सिर्फ तकनीक या वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि विनिमय के तरीके हैं। लोग आपस में कैसे लेन देन करते हैं, उपहार से, लूट से, खरीद फरोख्त से या आज़ाद सहयोग से, यही समाज का ढांचा तय करता है। ये एक नया लेंस है इतिहास देखने का।
हाँ, और दूसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी वो है पूंजी राष्ट्र राज्य की त्रयी। ये आज की दुनिया को समझने की चाबी है। वाकई ये तीनों, बाजार, सरकार और देशभक्ति, ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे में गुंथे हुए हैं और यही इस सिस्टम को इतना मजबूत, इतना रेजिलिएंट बनाता है। इसे बदलना है तो तीनों पर एक साथ सोचना होगा। ये बात दिमाग में बैठ गई।
बिल्कुल, और तीसरी बात वो सबलेशन का आइडिया कि पुराने तरीके पूरी तरह मरते नहीं बल्कि नए सिस्टम में दब जाते हैं, अपना रूप बदलते हैं और फिर किसी और शक्ल में लौट आते हैं।
जैसे मोड ए, वो कबीलाई एकता आज राष्ट्रवाद के लोक में लौट आया।
सही, ये समझाता है कि क्यों आज भी इतने ग्लोबलाइजेशन और बाजारवाद के बावजूद राष्ट्रवाद इतना शक्तिशाली क्यों है। ये सिर्फ कोई भावना नहीं है, ये सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है।
चौथी बात, मोड ई की संभावना, वो आज़ादी, बराबरी और आपसी सहयोग की जो इंसानी इच्छा है, जो बार बार इतिहास में अलग अलग रूपों में उभरती है, ये सिर्फ एक यूटोपियन सपना नहीं है बल्कि ये मौजूदा व्यवस्था की आलोचना करने और एक बेहतर दुनिया बनाने का नैतिक आधार भी देती है, एक उम्मीद।
और पांचवी, राज्य केंद्रित क्रांतियों की सीमाएं, मतलब 20वीं सदी के अनुभवों से ये सबक लेना कि सिर्फ राज्य की ताकत पर कब्जा करके पूंजीवाद को खत्म करने की कोशिश एक और तरह के दमन को जन्म दे सकती है। बदलाव के लिए शायद ज्यादा गहरे और चौतरफा रास्ते खोजने होंगे, सिर्फ सरकार बदलना काफी नहीं।
और अगर भारत के संदर्भ में सोचें तो ये त्रयी कितनी साफ दिखती है। यहाँ बाजार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन परिवार, जाति, समुदाय ए के रूप आज भी कितने मजबूत हैं। सरकार बी का दखल तो हर जगह है ही, और राष्ट्रवाद ए का बदला हुआ रूप तो रोजमर्रा की बहस का अहम हिस्सा है। कार्यतानी का ये फ्रेमवर्क इन सबको एक साथ जोड़ने में समझने में मदद करता है।
हाँ बिल्कुल, और किताब में कुछ ऐसे विचार हैं जो सच में दिमाग में अटक जाते हैं, उन्हें अगर अपने शब्दों में कहें तो।
हाँ, जैसे पहला तो यही कि दुनिया का इतिहास चीजें बनाने के तरीकों की कहानी नहीं है, बल्कि लेन देन के चार तरीकों, मदद, लूट, बाजार, आजाद जुड़ाव, इनके आपसी खेल की कहानी है। ये तो पूरी किताब का सार है एक तरह से।
बिल्कुल, और दूसरा ये कि आज की दुनिया पूंजी, राष्ट्र और राज्य की एक ऐसी गांठ में बंधी है कि अगर इसे खोलना है तो तीनों धागों पर एक साथ ध्यान देना होगा, एक को छोड़कर बाकी दो को नहीं सुलझा सकते। ये आज के सिस्टम की असलियत बयान करता है।
और ये वाला तो बहुत तीखा है, पर सोचने पर मजबूर करता है। पिछली सदी की क्रांतियां इसलिए फेल हुईं क्योंकि उन्होंने मालिक, पूंजीवाद का घर तोड़ने के लिए मालिक के ही औजार यानी राज्य की ताकत, मोटिव बी का इस्तेमाल किया। ये सीधी आलोचना है पिछले तरीकों की।
और भविष्य के लिए ये दिशा, रास्ता पुराने कबीले में लौटना नहीं है, बल्कि उसकी बराबरी और आपसी मदद वाली भावना को पूरी दुनिया में एक ऊंचे स्तर पर जानबूझकर बनाना है। यह इतिहास हमें मजबूर नहीं करेगा, यह हमारा नैतिक फर्ज है। यह मोड डी की दिशा है, एक पुकार है।
ये विचार सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम वाकई पूरी व्यवस्था बदलना चाहते हैं या बस उसके कुछ हिस्सों से परेशान हैं? कारातानी की चुनौती यही है कि टुकड़ों में सोचने से शायद बात नहीं बनेगी, पूरी तस्वीर देखनी होगी।
तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी और सैद्धांतिक लगता है, लेकिन आम जिंदगी में इसका क्या मतलब है? हम इन विचारों का क्या करें? कोई प्रैक्टिकल बात?
मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये वर्तमान घटनाओं को समझने में एक नया नजरिया देता है। जैसे जब कोई आर्थिक मंदी आती है, मोड सी का संकट, तो अक्सर राष्ट्रवाद या कड़े कानूनों की मांग मोड ए बी का उभार क्यों बढ़ जाती है, या फिर क्यों हमेशा ग्लोबल बिजनेस और राष्ट्रीय सरकारों के बीच एक तनाव सा बना रहता है। कारात्निका का ढांचा हमें इन ऊपरी चीजों के नीचे काम कर रही ताकतों को देखने में मदद करता है।
सही, हम सामाजिक आंदोलनों को भी इस नजर से देख सकते हैं, जैसे किसान आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन। क्या वे बाजार और राज्य के तर्क से अलग एक तरह की न्याय और सहयोग मोडी की मांग कर रहे हैं?
हाँ, और ये हमारी राजनीतिक सोच को भी बदल सकता है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो शायद सिर्फ सरकार बदलने या बाजार के कुछ नियम बदलने से काम न चले, हमें तीनों मोर्चों पर सोचना होगा।
तीनों मोर्चे मतलब?
मतलब आर्थिक विकल्प क्या हो सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव्स, स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं। राजनीतिक विकल्प क्या हो सकते हैं, जैसे ज्यादा स्थानीय कंट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। और सामाजिक सांस्कृतिक विकल्प क्या हो सकते हैं, जैसे कट्टर राष्ट्रवाद या जातिवाद जैसी चीजों से आगे बढ़कर सोचना।
और एक और दिलचस्प चीज है, वो प्रीफिगरेटिव पॉलिटिक्स वाली बात।
हाँ हाँ, यानी जैसी दुनिया हम भविष्य में चाहते हैं उसके छोटे छोटे रूप आज ही बनाना शुरू करें।
जैसे?
जैसे अपने मोहल्ले में कोई आपसी मदद का ग्रुप बनाना, कोई छोटी सहकारी समिति शुरू करना, या ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना जहां लोग मिलकर बिना पैसे के लिए कुछ बना रहे हैं। ये सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं है, ये असल में मोदी के छोटे छोटे प्रयोग हैं। ये दिखाते हैं कि लोग बिना मुनाफे के लालच या सरकारी डंडे के भी मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं।
यह हमें अपनी सोच और भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। मुझे लगता है हम अक्सर अपने देश या सरकार के प्रति वफादारी को बहुत नेचुरल, बहुत स्वाभाविक मानते हैं।
हाँ, जैसे वो रगों में ही हो।
बिल्कुल, क्रांतिकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये भावनाएं कैसे बनती हैं और कैसे ये अनजाने में ही सही पूंजी और राज्य के सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती हैं। इससे हम अपनी पहचान और राजनीति को लेकर ज्यादा गहराई से, ज्यादा क्रिटिकली सोच सकते हैं।
तो इस पूरी गहरी बातचीत से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? मेरे लिए तो शायद ये कि हमारी आज की दुनिया ये खुला बाजार, ये ताकतवर सरकारें, ये राष्ट्रवाद, ये सब कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये इतिहास के एक खास दौर में बनी, आपस में जुड़ीगी एक व्यवस्था है, और जो बना है वो बदल भी सकता है।
बिल्कुल, क्रांतिकारी हमें एक नया नजरिया, एक नई भाषा देते हैं जिससे हम उन चीजों के बीच का कनेक्शन देख पाते हैं जिन्हें हम अक्सर अलग अलग सोचते हैं, पैसा, सरकार और देशभक्ति। और सबसे अहम बात, वो ये दिखाते हैं कि एक ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया का रास्ता शायद सिस्टम के किसी एक हिस्से को ठीक करने में नहीं, बल्कि इस पूरी त्रयी, पूंजी, राष्ट्र, राज्य के विकल्प बनाने की एक मिलीजुली, एक समग्र कोशिश में है।
और मोड डी का विचार भले ही वो अभी एक दूर का आदर्श लगे, पर वो एक ध्रुव तारे की तरह काम कर सकता है, एक गाइड। वो हमें याद दिलाता है कि आपसी सहयोग, बराबरी और आज़ादी पर आधारित रिश्ते बनाना संभव है, और हमें उसी दिशा में काम करते रहना चाहिए, चाहे छोटे छोटे कदम उठाकर ही सही।
हाँ, ये किताब सिर्फ हमारे अतीत और वर्तमान की व्याख्या नहीं करती, बल्कि भविष्य के लिए एक उम्मीद भी जगाती है। और ये उम्मीद सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि तर्क और नैतिकता पर आधारित है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई इस सिस्टम से आगे जा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। शायद पहला कदम यही सोचना है कि हम अपने आसपास, अपनी जिंदगी में मोड डी के छोटे छोटे बीज कैसे बो सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।